डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 21 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के और भजन की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या 21 धार्मिक दृष्टिकोण राज्याभिषेक स्तोत्र स्तोत्र 2 और 110 है। हमने मान्यता प्राप्त को देखा। हम भजनों की व्याख्या करने के लिए मान्यता प्राप्त तरीकों या दृष्टिकोणों को देख रहे हैं और फिर किसी दिए गए भजन पर शून्य और जूम इन कर रहे हैं और इसे और अधिक विस्तार से संभाल रहे हैं। इसलिए हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लिए भजन 4 को देखा। हमने स्तुति के भजन के लिए भजन 100 को देखा। हमने स्तुति के कृतज्ञ स्तोत्र को देखा। और अब मुकदमेबाजी में, इसलिए मैंने सोचा कि विलाप स्तोत्र की तरह मैंने स्पष्ट रूप से मसीहाई स्तोत्र लिया है, जिसका उपयोग नए नियम में नाजरेत के यीशु मसीह के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए मैं 2 राज्याभिषेक स्तोत्र लूंगा। यह वह स्तोत्र है जिसमें राजा का राज्याभिषेक किया जाता है, क्योंकि दाऊद के पुत्र का इसराइल के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है। इन दोनों भजनों को नए नियम में उद्धृत किया गया है, अर्थात भजन 2 और भजन 110। आपके नोट्स के पृष्ठ 269 पर हम परिचय के माध्यम से भजन के अनुवाद के साथ शुरुआत करते हैं और फिर हम भजन की रूपरेखा देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि भजन की सेटिंग सियोन है, संभवतः मंदिर में। सबसे पहले अनुवाद, राष्ट्र व्यर्थ में लोगों की साजिश क्यों रचते हैं? प्रेवी के राजा और हाकिम मैं और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं। आइए हम उनकी जंजीरें तोड़ दें और उनकी बेड़ियां उतार फेंकें। जो स्वर्ग की हंसी में विराजित है, प्रभु उनका उपहास करता है। तब उसने उनसे क्रोध में बातें की और क्रोध से उनको घबरा दिया। परंतु मैं अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन पर स्थापित करता हूँ। मैं डिक्री की घोषणा करूंगा, तुम मेरे बेटे हो, आज मैं तुम्हें जन्म देता हूँ। मुझसे मांगो और मैं राष्ट्रों को तुम्हारी विरासत और पृथ्वी के छोर तक तुम्हारी संपत्ति दे दूंगा। उन्हें कुम्हार के बर्तन की नाई लोहे की छड़ से तोड़ डालो और टुकड़े टुकड़े कर दो। इसलिए हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, प्रेवी के हाकिमों सावधान रहो। मैं भय के साथ सेवा करता हूँ और कांपते हुए उसके शासन का जश्न मनाता हूँ। उसके बेटे को चूमो, कहीं ऐसा न हो कि वह क्रोधित हो जाए और तू अपने मार्ग में नष्ट हो जाए, क्योंकि उसका क्रोध शीघ्र ही भड़क उठेगा। जो लोग उसमें शरण लेते हैं, वे कितने धन्य और कितने पुरस्कृत हैं। 12 छंदों का यह भजन 4 छंदों में विभाजित है और प्रत्येक छंद में 3 छंद हैं। छंदों को विभिन्न वक्ताओं द्वारा चिह्नित किया गया है। पहले श्लोक में हम राष्ट्रों को बोलते हुए सुनते हैं। हम उन्हें पद 3 में यह कहते हुए सुनते हैं, आइए हम अर्थात प्रभु और उनके अभिषिक्त राजा को तोड़ दें। आइए हम उनकी जंजीरें तोड़े और उनकी बेड़ियां उतार फेंकें। फिर हम ईश्वर के शासन को त्यागते हुए बुतपरस्त राजाओं के सांसारिक दरबार से निकाल दिए जाते हैं। फिर हम छंद 4 से 6 तक स्वर्गीय दरबार में उठाए जाते हैं। हम उसे स्वर्ग में विराजमान देखते हैं और हम उसे पद 6 में बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन मैं अपने राजा को सियोन, मेरी पवित्र पहाड़ी पर रोक देता हूँ। अगले 3 श्लोकों में श्लोक 7 से 9 तक संभवतः राजा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वह डेविडिक वाचा की एक शर्त की घोषणा कर रहा है, जिसमें भगवान उससे कहते हैं, तुम मेरे पुत्र हो। और इसलिए जो बोल रहा है वह परमेश्वर का पुत्र है और वह मसीह है। वह वही सुनाता है जो भगवान ने उससे कहा था। अंतिम छंद में भजनहार बोल रहा है और वह सीधे पृथ्वी के राजाओं को संबोधित कर रहा है। तो हमारे पास शत्रुतापूर्ण राजाओं की यह रूपरेखा है और हमें उनके अपने शाही महल में ले जाया जाता है। वे आई एम और उसके राजा के शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। दूसरे श्लोक में 4 से 6 तक मैं स्वयं बोलता हूँ और वह अपने राजा को सियोन पर्वत पर स्थापित करने का संकल्प करता है। तीसरा श्लोक राजा बोलता है और वह पृथ्वी पर प्रभुत्व प्रदान करने वाले आदेश को सुनाने का संकल्प करता है। और अंत में भजनकार बोलता है। वह मंच पर ही कदम रखता है और वह शत्रु राजाओं को आई एम और उसके राजा के अधीन होने की चेतावनी देता है। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि स्तोत्र की स्थापना एक राज्याभिषेक पूजा है, क्योंकि यह छंद 6 में कहता है, मैं अपने राजा को सियोन मेरी पवित्र पहाड़ी पर स्थापित करता हूँ। और फिर वह कहता है, राजा कहता है, मैं आज्ञा का प्रचार करूंगा जिसमें कहा गया है कि तू मेरा पुत्र है। आज मैं तुम्हें जन्म देता हूँ। आज संभवतः उसके राज्याभिषेक का दिन है जिसमें वह गोद लेने के माध्यम से राजा बन जाता है, भगवान का पुत्र, क्योंकि उसे भगवान की पवित्र पहाड़ी सियोन पर राजा के रूप में स्थापित किया गया है। एक अन्य सेटिंग पुस्तक के भीतर की सेटिंग है जिसमें पुस्तक में मौजूद जर्मन प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है। यह स्तोत्र के परिचय का हिस्सा है। भजन 1 और 2 एक परिचय हैं। उनके पास कोई सुप्रस्क्रिप्ट नहीं है। उनकी वहां कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है और वे संबंधित हैं। उनके पास ऐसे कई शब्द हैं जो उनसे संबंधित हैं। इसलिए उदाहरण के लिए भजन 1 शुरू होता है, धन्य है वह मनुष्य या व्यक्ति कितना पुरस्कृत है बल्कि जो ईश्वर के नियम का पालन करता है। और आपने श्लोक 12 में देखा है, मैंने इसे इटैलिक में डाल दिया है कि जो लोग उसमें शरण लेते हैं वे कितने पुरस्कृत कितने धन्य हैं। तो भजन 1 धन्य शब्द से शुरू होता है और भजन 2 धन्य शब्द से समाप्त होता है। क्रिया हागा पर भी ध्यान दें जिसका अर्थ है ध्यान करना। और इसका एक और अनुवाद है, धर्मप्रायण व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहा है। इसके विपरीत अध्याय 2 के श्लोक 1 में राजा ध्यान कर रहे हैं, अनुवादित कथानक वे भगवान के शासन को उखाड़ फेंकने पर ध्यान कर रहे हैं। दोनों इस शब्द का प्रयोग उपहास करने के लिए करते हैं। परंतु आयत में एक अधर्मी है जो धर्मियों का उपहास कर रहा है। भजन 2 में यह परमेश्वर है जो दुष्टों का मजाक उड़ा रहा है। मार्ग और नाश का रूपक दोनों भजनों में प्रयोग किया गया है। तो भजन 1 में हमारे पास है कि दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, और हमारे पास भजन 2:12 बी में है, आप होंगे ऐसा न हो कि वह क्रोधित हो जाए और आप अपने तरीके से नष्ट हो जाएं, वही भाषा। इसलिए संपादक ने संभवतः इन 2 स्तोत्रों का उपयोग पुस्तक का परिचय देने के एक तरीके के रूप में किया ताकि उन लोगों को तैयार किया जा सके जो उसकी याचिकाओं और स्तुतियों और विनाश के संकलन पर ध्यान करते हैं, ताकि वे राजा के संबंध में और उसके राज्य के व्यक्तियों के रूप में खुद के संबंध में स्तोत्र की व्याख्या कर सकें। इसलिए जिस तरह से हम भजन पढ़ते हैं उसका दोहरा स्तर है। वे राजा पर लागू होते हैं और वे राजा के साथ हमारे संबंध में व्यक्तियों के रूप में हम पर भी लागू होते हैं। अंत में कैनन के भीतर ही यह सेटिंग है कि भजन की पूर्ति मसीह और उसके राज्याभिषेक में होती है जब वह स्वर्ग में चढ़ गया और वह भगवान के दाहिने हाथ पर बैठ गया। इसका तात्पर्य ऐतिहासिक राजा से परे है जो भजन 2 में स्पष्ट है, क्योंकि यह राजा पृथ्वी के छोर तक शासन करता है। दाऊद ने अपने सर्वोत्तम समय में मिस्र की नदी से लेकर महान नदी फ्रात तक शासन किया, लेकिन भजन उस प्रभुत्व को पृथ्वी के छोर तक बढ़ाते हैं। और नया नियम इस भजन की पहचान यीशु से करता है। वास्तव में जैसा कि राजाओं ने ऐतिहासिक राजा को अस्वीकार कर दिया था जब पीटर और जॉन ने मंदिर में लंगड़े आदमी को ठीक किया, तो वह खुश होकर चला गया और यह गेट पर किया गया, सुंदर जहां मसीह का स्वागत किया जाना चाहिए था। नेतृत्व ने पीटर और जॉन और चर्च को फिर से खारिज कर दिया और वे कहते हैं, भजन उद्धृत करो, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। क्यों राष्ट्र लोग लोगों की साजिश और व्यर्थ में क्रोधित होते हैं? प्रेवी के राजा यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध उठ खड़े हुए और हाकिम इकट्ठे हो गए और फिर वे टिप्पणी करते हैं, और यह विडंबना है कि धार्मिक शासक पीलातुस के साथ, रोम के साथ, पृथ्वी के लोगों के साथ मिल गए हैं। क्योंकि मूल रूप से राष्ट्र गोयिम वे इज़राइल नहीं हैं और लीमिम लोग इज़राइल नहीं हैं, लेकिन वे सभी एक साथ मिल गए हैं क्योंकि वे मसीह और उसके चर्च के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। सचमुच हेरोदेस और पुंतियुस पीलातुस ने अन्य जातियों और इसराइल के लोगों के साथ मिलकर नगर में तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है जिसका तूने अभिषेक किया है। उन्होंने वही किया जो आपकी शक्ति और इच्छा शक्ति ने पहले ही तय कर लिया था कि होना चाहिए, और इसलिए वे मानते हैं कि यह सब दैवीय संप्रभुता के अधीन था, मसीह और उनके प्रेरितों और उनके चर्च की अस्वीकृति। एक प्रारंभिक प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्री एमिरोट ने कहा कि हमें अपनी बाईं आंख ऐतिहासिक राजा पर और अपनी दाहिनी आंख यीशु मसीह के प्रतिरूप पर रखनी होगी। इसलिए हमें अपनी बाईं आंख ऐतिहासिक राजा पर और अपनी दाहिनी आंख शाश्वत मसीह पर रखनी चाहिए। और इसलिए जब हम भजनों की व्याख्या करते हैं तो हम हमेशा इस इतिहास और इस टाइपोलॉजी को आगे की ओर इशारा करते हुए देखते हैं। हम इसे बार बार लागू करेंगे कि यह मसीह और उसके चर्च के बारे में कैसे बात करता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि भजन उसके बारे में बोलते हैं। खैर, आइए स्तोत्र को उजागर करें और अनुवाद को हाथ में रखें, और आइए पहले श्लोक से शुरू करें जो शत्रुतापूर्ण राजाओं द्वारा आई एम के शासन को उखाड़ फेंकने के बारे में है। श्लोक एक में हमें स्तोत्र द्वारा तुरंत बताया गया है, नियम को उखाड़ फेंकने की उनकी साजिश सफल नहीं होगी। पद दो में वह हमें सूचित करता है कि विद्रोह सार्वभौमिक है, यह विश्वव्यापी है, और तीसरा उसके शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उनकी प्रेरणा है। सबसे पहले तो उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी, और वह उनके द्वारा एक ऐसी साजिश रचने पर अपना आश्चर्य और आक्रोश व्यक्त करता है जो विफल होने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि यह स्वयं भगवान शाश्वत और उसके द्वारा स्थापित राजा के खिलाफ है। तो जब वह कहता है राष्ट्र क्रोध क्यों करते हैं, वह असली सवाल नहीं पूछ रहा है। वह वापस आकर यह कहने की उम्मीद नहीं कर रहा है, ठीक है, यहां कारण एक दो तीन चार है। यह पूरी तरह से अलंकारिक है। वह अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। आखिर वे ऐसा काम क्यों करेंगे? लेकिन यह स्वतंत्रता का नियम है, यह जीवन का तरीका है, और यह सफल नहीं हो सकता। फिर भी दुनिया इस पर जोर देती है। राष्ट्र और लोग मूल रूप से अन्य जातियों को संदर्भित करते थे। संभवतः भजन प्राचीन निकट पूर्व में क्या हुआ था, जब आपको एक नया राजा मिलता था तो राष्ट्र नए राजा का परीक्षण करते थे और उसके शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते थे। इसलिए डेविड अपने उत्तराधिकारियों के राज्याभिषेक की आशा कर रहे हैं। वह अनुमान लगाता है कि हर बार राष्ट्र उसके शासन और उसकी शक्ति का परीक्षण करेंगे और मुक्ति के उसके प्रभुत्व के अधीन होने से इनकार करेंगे। तो वे साजिश रचते हैं, और वे साजिश रचते हैं जिसका मतलब है कि वे एक साथ मिल रहे हैं। वे पहला दृश्य तैयार कर रहे हैं। फिर मैं हमें एक बुतपरस्त दरबार में ले जाता हूँ। वे भगवान को मारने और उसके राजा को मारने के लिए कृत संकल्प हैं। जैसा कि मैं मानता हूँ कि जिन लोगों का एजेंडा है एक विश्व सरकार और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक धर्मनिरपेक्ष वैश्विक सरकार, यदि आप चाहें तो बैबिल की पुनर्स्थापना, और वे इसे धर्मों के दमन, अंतरात्मा के दमन के द्वारा करेंगे। वाणी का दमन। यह वह जगह है जहां मैं देखता हूं, यंत्रवत हमारा प्रशासन हमें एक विश्व सरकार की ओर ले जा रहा है, जो अंतरात्मा की सभी स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता को छीन लेगी और हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घृणास्पद भाषण, कुछ भी कहेंगे जो उनका विरोध करता है विचारधारा। वे ईश्वर से छुटकारा पाना चाहते हैं और वे चर्च से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि चर्च स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और गवाही देने की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह रोम के अत्याचार की पुनः स्थापना है। यही मैं दुनिया को एक विश्व सरकार की ओर जाते हुए देखता हूं, आपके साथ स्पष्ट रहें। ऐतिहासिक रूप से हम जानते हैं कि ऐसा हुआ था और हमारे पास एल अमरना पत्राचार है। तुखन्नमुन के शासनकाल के दौरान की एक साइट है, वास्तव में 1300 लगभग 1300 ईसा पूर्व, जिसमें हम छोटे राजाओं के बारे में सुनते हैं। हमारे पास उनका पत्र व्यवहार है जिसमें छोटे राजा मिस्र के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। तो यह मिस्र के सुसान और एक दूसरे के खिलाफ सीरिया, फिलिस्तीन के छोटे राजाओं की साजिशों और साजिशों का एक ग्राफिक विवरण प्रस्तुत करता है। लेकिन वह कहता है, यह व्यर्थ है, यह सफल नहीं होगा। तो हमें यह तनाव है। परमेश्वर इस दुष्ट को यह प्रदर्शित करने की अनुमति देता है कि वह कौन है और बुराई पर उसकी विजय है। फिर वह उनके सार्वभौमिक विद्रोह के बारे में बात करता है। वह पृथ्वी के राजाओं और शासकों के बारे में बात करता है, श्लोक 2, पृथ्वी के राजाओं और उनके शासकों के बारे में, और वे अपने लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो ये पृथ्वी के सभी राजा हैं। उन्हें पृथ्वी का कहा जाता है क्योंकि यह उस परमेश्वर के विपरीत है जो स्वर्ग में था। वे युद्ध में अपना रुख अपनाते हैं और अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए योजना बनाने के लिए एकजुट होते हैं। उनका विद्रोह में अनुबंधों का परमेश्वर, 10 आज्ञाओं का परमेश्वर के विरुद्ध है। मुझे यकीन है कि कुछ हद तक अमेरिका को 10 आज्ञाओं से छुटकारा दिलाना है और ईश्वर से स्वतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करना है। मेरा मानना है कि वे हमें आने वाले फैसले के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अधिकांश ईसाई समझते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, और वे IM के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। और हमने कहा, यह भगवान का नाम है कि वह शाश्वत है जो इतिहास में खुद को ज्ञात करता है। वह बुराई पर अपनी जीत और रहस्योद्घाटन के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। जब यह अपने अभिषिक्त व्यक्ति के विरुद्ध कहता है, तो यह भाषण का एक अलंकार है जिसे रूपक के रूप में जाना जाता है, जो कि सहायक का एक रूपक है। और स्तोत्र में अभिषिक्त व्यक्ति राजा है। पुराने नियम में 3 पवित्र व्यक्ति थे जिनका अभिषेक किया गया था। वहां राजा था, वहां याजक था और वहां भविष्यवक्ता या पैगंबर था, निस्संदेह आत्मा द्वारा अभिषिक्त। लेकिन स्तोत्र में अभिषेक का तात्पर्य राजा से है, और उस अभिषेक में कई विचार शामिल हैं। पैगंबर उसे नामित करेगा। आप जानते हैं, मिट्टी के घड़े से या मेढ़े के सींग से। आइए राम का सींग लें। मेढ़े के सींग का एक बड़ा सिरा होता जो शीर्ष पर सिर से जुड़ा होता। फिर बिंदु को खोखला कर दिया जाएगा ताकि यह मेढ़े के सींग को सुगंधित तेल से भर दे। तब वह नियुक्त राजा के पास आता था और वह उस सुगंधित तेल को राजा को सिर से पैर तक ढकने देता था। उसने पुजारी के लिए भी ऐसा ही किया। अब वह अभिषेक, वह तेल से लेपन, वह राजा की मुहर, वह शब्द कैशेट, मैं अधिकार की मुहर के अर्थ का उपयोग कर रहा हूं। यही बात उसे अलग करती थी। जैसे राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की मुहर होती है, यदि आपके पास राष्ट्रपति की मुहर है तो यह अधिकार के साथ बोलता है और इसलिए यह राजा का राज है। यह राजा की मान्यता है। यह राजा की वैधता है कि वह राजा है क्योंकि एक भविष्यवक्ता ने उसका अभिषेक किया है। यदि आपके पास भविष्य सूचक अभिषेक नहीं है तो आप एक वैध राजा नहीं हैं। तो उस मामले में जब अदोनियाह ने खुद को राजा के रूप में स्थापित किया, भले ही उसके पास अपने युग के मोशे दयान की तरह महान सेनापति योआब था, लेकिन सबसे महान सेनापति योआब था। उसके पास एब्यातार भी था जो जंगल में दाऊद की सभी कठिनाइयों के साथ दाऊद के साथ गया था। उन सभी ने अदोनियाह का समर्थन किया, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी। उनके पास भविष्य सूचक पदनाम नहीं था। सुलेमान के पास नाथन था जो भविष्यवक्ता का पदनाम था, इसलिए उन्हें राजा के रूप में मान्य किया गया। यदि आप दोहरे राजतंत्र के दौरान भविष्यवक्ताओं के दिमाग को पढ़ेंगे तो वे उत्तरी और दक्षिणी राजाओं का हवाला देंगे, लेकिन वे उन राजाओं का जिक्र नहीं करेंगे जिन्होंने खुद को सिंहासन पर स्थापित किया था, जैसे पेकिया या पेका या होशे। उन्होंने खुद को बिना किसी प्रामाणिक मान्यता के स्थापित किया है और भविष्यवक्ता उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए वे उनका हवाला ही नहीं देते। वे सिंहासन के दावेदार हैं। तो राजा के पास वह अभिषेक है जो उसे अलग करता है। उस अभिषेक में वह भगवान की संपत्ति बन जाता है। तो मंदिर में हर चीज का अभिषेक किया गया, फर्नीचर के सभी टुकड़ों का, पुजारी का अभिषेक किया गया। अभिषेक से यह भगवान की संपत्ति बन जाती है, इसलिए जब आप उसकी संपत्ति को छूते हैं तो आप उसकी पवित्रता को अपवित्र करते हैं, तो भगवान का क्रोध भड़क उठता है। उदाहरण के लिए, यही कारण है कि दाऊद शाऊल को नहीं मार सका क्योंकि उसने कहा था, परमेश्वर के अभिषिक्त को मत छू। शमूएल के अधीन अभिषेक के द्वारा शाऊल परमेश्वर की संपत्ति बन गया था और दाऊद उसकी संपत्ति को छू नहीं सकता था, और भगवान को अपनी संपत्ति का निपटान अपने तरीके से करना था। डेविड ने यही पहचाना। वह या तो युद्ध में मारा जाएगा या भगवान किसी अन्य तरीके से खुद को छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान ने उनका अभिषेक भी किया है। तो हमारे पास यह अस्पष्ट स्थिति है जहां भगवान ने दो राजाओं का अभिषेक किया। यह दाऊद को परखने का एक साधन था कि क्या वह शाऊल को हराने के लिए विश्वास से चलेगा और ईश्वर पर भरोसा करेगा और मामलों को अपने हाथों में नहीं लेगा। लेकिन फिर भी अभिषेक ने राजा को अलग कर दिया। मैं सोचता हूं कि इसीलिए शाऊल ने कहा कि वह पापियों का मुखिया है, क्योंकि उसने व्यवस्था का पालन किया, और तो भी वह कहता है, मैं पापियों में प्रधान हूं। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि उसने भगवान को मारने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि उसने परमेश्वर के अभिषिक्त मसीह को छुआ है। मुझे लगता है कि वह ऐसा ही था। उसने अपनी मुट्ठी स्वर्ग में ले ली और सीधे मसीह की नाक पर मुक्का मार दिया, और वह कहता है, मैं पापियों में मुख्य हूं क्योंकि मैंने मसीह का इनकार किया, मैंने उसके शरीर पर अत्याचार किया, मैंने उसके चर्च पर अत्याचार किया। खैर, ये हैं। और फिर अभिषेक का तीसरा विचार यह है कि अब वह राजा के कार्य करने के लिए सशक्त है। यह राजा पर आने वाली परमेश्वर की आत्मा की एक तस्वीर थी। जहां तक हम इसे आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि मसीह के पास जॉन द बैप्टिस्ट का प्रतीक है, कि सभी इज़राइल जानते थे कि जॉन बैप्टिस्ट ईश्वर का था। और यीशु ने अपने अस्वीकार करने वालों से कहा, तुमने यूहन्ना की प्रतीति क्यों न की? सभी लोग जानते थे कि एक सच्चा भविष्यवक्ता उनके बीच में है, और वह कहता है, मैं कहता हूं यूहन्ना 5, यह हमारे मसीह होने का एक प्रमाण है। वह कहता है, ऐसा नहीं कि मुझे इसकी आवश्यकता थी, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे लिए तुम देख सकते हो कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। और उसने मेरा अभिषेक करके कहा, वह चंदन आदि की कुंडी खोलने के योग्य नहीं है। और वह परमेश्वर की संपत्ति थी। उसने स्वयं को ईश्वर से अलग कर लिया। और मामले की सच्चाई यह है कि जब तक वह अपना जीवन नहीं सौंप देता, कोई भी उसे वास्तव में छू नहीं सकता था, जैसा कि हमने अन्यत्र उल्लेख किया है। खैर, वह वही है और वह अभिषिक्त है। उसके पास ईश्वर की शक्ति थी। और इसी तरह हम पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त हैं। हम अलग हो गए हैं। हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है कि हम ईश्वर की कृपा से पवित्र जीवन जीते हैं। यह ईश्वर की आत्मा है जो हमारे अंदर है। यही हमारी पहचान है कि हम ईश्वर की संतान हैं। प्रेरणा ईश्वर के शासन को उखाड़ फेंकना है। और जबकि पवित्र और संत भूत जो भगवान से प्यार करते हैं और भगवान से डरते हैं, उनके लिए यह उनकी खुशी है। और वे दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते रहते हैं। अविश्वासी के लिए यह भीषण बंधन है। यह उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा है। और इसलिए हमारे पास यह है, हमारे पास इस कथानक का पहला छंद है। यह सार्वभौमिक है और वे ईसा मसीह के शासन के अधीन नहीं आना चाहते। वे इसे रस्सियों और बंधनों के विभत्स बंधन के रूप में देखते हैं, चाहे यह गर्दन पर जुए की तरह हो या मैं आपको यहाँ कैद में ले जाए जा रहे लोगों की एक तस्वीर देता हूँ। इस विशेष मामले में विजेता ने अपने पीड़ितों की जीभ में छेद कर दिया है और उन्हें जीभ से खींचने और उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उनमें रस्सियां डाल दी हैं। हम दूसरे श्लोक की ओर मुड़ते हैं और मैं उसके राजा को सियोन उसकी पवित्र पहाड़ी पर स्थापित करता हूँ। यहाँ पद चार में हम सीखते हैं कि भगवान स्थिति पर हंसते हैं। हमें उस पर टिप्पणी करनी होगी। और जब हम शैडेनफ्रूड के बारे में बात करते हैं तो भगवान हंसते हैं। श्लोक पांच में भगवान क्रोधित हैं। और श्लोक छह में उसने अपने राजा को उसके सिंहासन पर बिठाने का संकल्प लिया है। श्लोक चार से आरंभ करते हुए स्वर्ग में विराजमान व्यक्ति उन पर हंसता है। संप्रभु उनका उपहास करते हैं। मैं ध्यान देता हूं कि कवि ने दूसरे छंद की शुरुआत इस प्रकार की है, मैं स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हूं और अपनी पवित्र पहाड़ी पर अभिषिक्त राजा के साथ समाप्त करता हूं। ऊपरी ढांचा सारी पृथ्वी पर उसके सार्वभौमिक अतिक्रमण की बात करता है और निचला ढांचा उसके करिश्माई राजा के माध्यम से उसकी आसन्न उपस्थिति की बात करता है, जो सारी पृथ्वी पर अपने राज्य का विस्तार करता है। तो जो सिंहासन पर बैठता है वह फिर से संप्रभु के लिए एक स्वायत्तता है जो पृथ्वीवासियों के विपरीत उत्कृष्ट है। और वह हंसता है। और मुझे लगता है कि इसके दो विचार हैं। एक विचार और मैंने दूसरा रखा, हंसी का पहला विचार, यह न्याय की हंसी है। यह धार्मिकता की हंसी है, अत्याचार पर न्याय की विजय है, दुष्टता पर धार्मिकता की हंसी है। यह हंसी है कि अत्याचारी पराजित होता है और उत्पीड़ितों को छुटकारा मिलता है। इसका उपयोग दो अन्य समयों में किया जाता है, जब हमें बताया जाता है कि भगवान हंसते हैं। यह भजन 37.12 में है। वहां वे अपने होठों पर तीखे शब्द रखकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या लगता है कि किसे पता चलेगा। भजन 37 धर्मियों के विरुद्ध दुष्ट षड्यंत्र है और उन पर दांत पीसना है। परंतु मैं वह हूं जो दुष्टों पर हंसता हूं, क्योंकि वह देखता है कि उनका दिन आता है। इसलिए वह उन दुष्टों के विनाश पर हंसता है जो धर्मियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। तो यह अन्याय पर विजय और धर्म की दुष्टता पर अत्याचार की हंसी है। और फिर भजन 59 को देखते हुए वहां वे अपने दांतों मुंहों पर तेज तलवारें लिए हुए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे हमारी बात सुनेंगे। यानी वे अधर्मी अधर्मी मूलतः नास्तिक हैं, लेकिन आप उन पर हंसते हैं। मैं हूं, तू सभी राष्ट्रों को विभाजन में रखता है। मुझे लगता है कि हंसी में शामिल इसका लगभग एक हास्य पहलू है। तो मेरे दिमाग में यह एक तरह से है, मैं गुलिवर और गुलिवर की यात्रा की कल्पना करता हूं जब वह लिलिपुट द्वीप पर उतरता है। पौ फटने से पहले ही पता चला कि उसका जहाज टूट गया है। वह समुद्र में है, लेकिन वह लिलिपुट द्वीप के करीब है। वह समुद्र तट की ओर बढ़ता है और घास के ढेर पर गहरी नींद में सो जाता है। वह सुबह लगभग 10 बजे उठता है और उसे किसी की दस्तक सुनाई देती है। वह नीचे देखता है और उसे एक सीढ़ी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। उसके लंबे बाल जमीन में गड़े हुए हैं, उसकी भुजाएं फैली हुई हैं और प्रत्येक उंगली के चारों ओर छोटे छोटे तार हैं और वे सभी नीचे की ओर बंधे हुए हैं। फिर वह इस सीढ़ी को देखता है और वह इस दस्तक को सुनता है और यहाँ लिलिपुटियन आते हैं और उनका नेतृत्व उनके राजा द्वारा किया जाता है। लिलिपुटियन उसकी छोटी उंगली के आकार के हैं और राजा एक उंगली के नाखून से बड़ा है, और इसलिए लिलिपुटियनों का यह राजा गुलिवर को बता रहा है कि क्या करना है। और गुलिवर कहता है, चलो तुम उन्हें ऐसे ही तोड़ सकते हो और यही कहानी का अंत होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह खेल के साथ साथ खेलता है। तो एक अर्थ में भगवान इसकी अनुमति दे रहा है। इसमें लगभग एक हास्यपूर्ण पहलू है ताकि हम जान सकें कि वह बुराई धार्मिकता पर विजय प्राप्त करता है और न्याय की जीत होगी और पराजित नहीं होगा। लेकिन इससे यह सवाल उठता है कि जर्मन शब्द शाडेनफ्रूड क्या है। यह बहुत अपमानजनक है कि हमें दूसरे लोगों के विनाश पर हंसना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि हमें दूसरे लोगों के विनाश पर खुश नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि हमें शाडेनफ्रूड के बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, जिसका जर्मन में मतलब होता है नुकसान होने पर खुशी, दूसरे लोगों को आहत देखकर खुशी होना। इसलिए ईसाई और गैर ईसाई संवेदनाएं आमतौर पर दूसरों के दुर्भाग्य से प्राप्त इसराइल की खुशी को मानती हैं, जिसे जर्मन शाडेनफ्रूड क्षतिग्रस्त खुशी कहते हैं, जैसा कि इसराइल के समुद्र के गीत और डेविड के भजनों में एक अयोग्य भावना के रूप में व्यक्त किया गया है। 1852 में डबलिन के आर्कबिशप ट्रेंच ने शब्दों के अपने अध्ययन में लिखा, यह कितनी डरावनी बात है कि किसी भी भाषा में उस आनंद को व्यक्त करने वाला शब्द होना चाहिए जो मनुष्य दूसरों की विपत्ति में महसूस करता है। इसलिए आज लोगों को शाडेनफ्रूड से परेशानी है कि भगवान दूसरों की क्षति से प्रसन्न होंगे। यहां तक कि 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक और नास्तिक शोपेनहावर ने भी इसे चिंतन करने के लिए बहुत भयानक पाया। फ्रेडरिक नीत्शे ने तर्क दिया कि दुर्भावनापूर्ण आनंद नाजायज है और किसी को दोषी बनाता है, क्योंकि आनंद कुछ न करने से प्राप्त होता है। मैं कहूंगा कि शाडेनफ्रूड एक खतरनाक भावना है, जब अन्याय का जश्न मनाया जाता है, लेकिन तब नहीं जब न्याय दिया जाता है। जब अन्याय का जश्न मनाया जाता है तो शाडेनफ्रूड एक खतरनाक भावना है, लेकिन जब न्याय दिया जाता है तब नहीं। जैसा कि इसराइल के गीत और नीतिवचन 1:20 में सिटी गेट पर महिला बुद्धि के उपदेश के मामले में, जहां हमें बताया गया है कि वह मूर्खों के विनाश पर हंसी थी। वर्जीनिया विश्वविद्यालय में धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर जॉन पोर्टमैन ने अपनी हालिया पुस्तक व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू अदर्स में तर्क दिया है कि न्याय एक गुण है। जब हम कानून तोड़ने वालों को नीचे गिरते हुए देखते हैं तो खुशी की अनुभूति भी वैसी ही होती है। दूसरे शब्दों में, यदि न्याय एक गुण है तो न्याय की जीत पर खुशी पूरी तरह से उचित और एक गुण है। यह सब अच्छा है जो हम करते हैं, क्योंकि उसकी खुशी कानून के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाती है। शाडेनफ्रूड न्याय का एक परिणाम है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर बस इतना ही है कि जब दुष्टों का नाश होता है तो वह आनंदित होता है। इसलिए हम तर्क दे रहे हैं कि शाडेनफ्रूड, जब यह न्याय की विजय के संबंध में है, एक गुण है। परंतु अब हम मसीह को देखते हैं और वह दुष्टता पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। मैं मसीह में नहीं पाता कि वह कभी दुष्टों के विनाश पर हंस रहा हो। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि उनके पहले आगमन में न्याय का समय नहीं था। जिस तरह से वह अपने उद्घाटन भाषण को संभालते हैं, यह सर्वविदित है कि वह यशायाह 61 से यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, जहां यशायाह कहते हैं, संप्रभु प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करने और भगवान के अनुग्रह के वर्ष और हमारे भगवान के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करने के लिए, कैदियों के लिए अंधेरे से रिहाई की घोषणा करने के लिए, टूटे हुए दिल को बांधने के लिए भेजा है। इस प्रकार यीशु ने इस भविष्यवाणी को पढ़कर और यह कहकर कि यह उसमें पूरी हुई है, नाजरेथ में अपना मंत्रालय शुरू किया। यह ल्यूक अध्याय 4 में पाया जाता है, जो श्लोक 16 से शुरू होता है। वह नाजरेथ गए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। सप्त के दिन वह अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में गया। वह पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और यशायाह की पुस्तक उसे दी गई। उसे लुढ़काने पर उसे वह स्थान मिला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे कैदियों के लिए स्वतंत्रता और अंधों के लिए दृष्टि की बहाली की घोषणा करने, नियुक्त लोगों को स्वतंत्र करने, प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करने के लिए भेजा है। इसलिए हमारे प्रभु स्वयं को यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि वह क्या नहीं पढ़ता, क्योंकि यशायाह में कहा गया है, प्रभु के अनुग्रह के वर्ष और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करना। लेकिन यीशु ने क्या किया? उन्होंने हमारे प्रभु के अनुग्रह का वर्ष पढ़ा। तब उसने पुस्तक लपेटकर सेवक को लौटा दी और बैठ गया। तो यह प्रतिशोध का दिन नहीं था, यह अनुग्रह का दिन है। और इसलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि आपको यीशु के उपदेश में यह नोट नहीं मिलता है, क्योंकि यह भगवान के अनुग्रह का वर्ष है, यह ईश्वर की कृपा का समय है, यह अनुग्रह और मुक्ति का समय है, प्रतिशोध और मृत्यु का समय है, और न्याय की हंसी अभी भी भविष्य है। क्या यह आपके जैसा जॉन में है, जहां यीशु कहते हैं, मैं न्याय करने नहीं बल्कि बचाने आया हूं? मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है, बहुत बहुत उसके समान। और जॉन भी, क्या वह जॉन 3 में है? नहीं, जॉन 3 में, हाँ, वही वह पाया गया है। वह यह बयान देता है, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है, और यही वर्ष है, यही मोक्ष का समय है, यह अनुग्रह का समय है, लेकिन न्याय का समय भी है। वह बाद में कहता है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें जज नहीं करने जा रहा हूं। मेरे शब्द होंगे, लेकिन विचार यह है कि यह एक अलग समय है, यह अलग है। मुझे विश्वास है कि आप इसे जॉन 6 में फिर से प्राप्त करेंगे। यह वही विचार है। मुझे नहीं लगता कि आज चर्च के लिए यह उचित है कि जब दुष्ट पराजित हों तो हंसे। मुझे कहना होगा कि यह अजीब लगता है, लेकिन मेरे लिए यीशु पहाड़ी उपदेश के विपरीत होगा। तुमने सुना है कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम पर जुल्म करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैं यह उदाहरण देता हूं जहां इस साल अंतः कैंटरबरी ने समलैंगिकता के खिलाफ एक स्टैंड लिया और एपिस्कोपल चर्च को चुप करा दिया। वे अब वास्तव में वोट नहीं दे सकते या एंग्लिकन कम्युनियन में भाग नहीं ले सकते। और मैं उसका उद्धरण देता हूं। तो एक स्तर पर मैं जीत पर खुशी मनाता हूं, लेकिन मैं उन दुष्ट बिशपों पर जीत पर खुशी नहीं मनाता। मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करूं। मुझे सचमुच विश्वास है कि यह सच है। मेरा मानना है कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। मुझे लगता है कि जो लोग समलैंगिक विवाह का समर्थन कर रहे हैं वे वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे घर को नष्ट कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं और बुरा कर रहे हैं। और मैं उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब वे हार जाते हैं तो मैं खुशी नहीं मनाना चाहता। यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है। मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया शाडेनफ्रूर में शामिल होने की है, लेकिन एक ईसाई के रूप में मैं जो कह रहा हूं मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए उचित है। तो भगवान उन पर हंसते हैं और भगवान उन पर क्रोधित हो जाते हैं। और यहीं पर लुईस बहुत मददगार है। मेरे निर्णय में पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध चर्च में एक बहुत ही उपेक्षित सिद्धांत है। हम केवल परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात नहीं करते हैं। पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध बहुत वास्तविक है। यहां मुझे लुईस बहुत मददगार लगता है। उनका कहना है कि बुतपरस्त साहित्य में क्रोध की इन अभिव्यक्तियों का अभाव है, क्योंकि इसराइल की सही और गलत पर गहरी पकड़ थी। वे क्रोध की अनुपस्थिति हैं, विशेष रूप से उस प्रकार का क्रोध जिसे हम आक्रोश कहते हैं। मेरी राय में सबसे खतरनाक लक्षण हो सकता है पाप के प्रति क्रोध की अनुपस्थिति। मैं हमारे समाज में क्रोध का अभाव देखता हूँ। मेरा मानना है कि यह सापेक्षता के कारण है, निरपेक्षता का नुकसान। क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है। हम सदोम और अमोरा की तरह बनते जा रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि ईश्वर के बिना मानकों के अब आपके पास सही और गलत का कोई निरपेक्ष आधार नहीं है। इसलिए अब आप नैतिक रूप से क्रोधित नहीं हैं, क्योंकि आपके पास इस बात पर कोई दृढ़ समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे लगता है कि यह हमारी उम्र का एक चिंताजनक लक्षण है। मुझे लगता है कि लुईस सही हैं। वह कहते हैं, यदि यहूदी और मैं पुराने नियम के संतों को यहूदी नहीं कहते तो मुझे लगता है कि यह एक अनाचारवाद है। आज यहूदी वह है जो यीशु को अस्वीकार करता है, जैसा कि हम उसे परिभाषित करते हैं। लेकिन पुराने नियम के संत उसके दिन की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए मैं उन्हें यहूदी नहीं कहता। वैसे भी अगर वे बुतपरस्तों की तुलना में अधिक कड़वाहट से शाप देते हैं तो मुझे लगता है यह कम से कम आंशिक रूप से था, क्योंकि उन्होंने सही और गलत को अधिक गंभीरता से लिया था। यदि हम उनकी रेलिंग को देखें तो हम पाते हैं कि वे आमतौर पर क्रोधित होते हैं, केवल इसलिए नहीं कि ये चीजें उनके साथ की गई हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्पष्ट रूप से भगवान के साथ साथ पीड़ित के प्रति भी गलत या घृणा करते हैं। धर्मी प्रभु का विचार, जिसे निश्चित रूप से ऐसे कार्यों से उतनी ही नफरत करनी चाहिए जितनी वे करते हैं, जो निश्चित रूप से इसलिए अवश्य करता है, लेकिन वह कितनी भयानक देरी करता है, न्याय करता है या बदला लेता है, यह हमेशा रहता है, भले ही केवल पृष्ठभूमि में। और इसलिए भगवान क्रोधित हो जाते हैं। वह क्रोधित हो जाता है जब वे उसके गौरवशाली व्यक्तित्व को घास खाने वाले, शौच करने वाले बैल में बदल देते हैं। और वे इसकी पूजा करते हैं। अविश्वसनीय और भगवान क्रोधित हैं, ठीक ही है। ईसा मसीह के मामले में मुझे नहीं लगता कि इतने सारे शब्दों में कभी यह कहा गया है कि यीशु क्रोधित हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना क्रोध तब व्यक्त किया था जब उन्होंने लाजर को मृतकों में से जीवित किया था। बिल, शायद आप यहाँ मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन ग्रीक शब्द एम्ब्रीमा ओवोमाई, मुझे लगता है कि मूल रूप से इसका मतलब सूंघना था। जब वह लाजर को उठाने जा रहा है तो यह कहता है, यीशु, मुझे लगता है कि यह इस स्थिति में जो होने वाला है उसे सख्ती से अस्वीकार करने के बराबर है। मुझे लगता है कि वह इस स्थिति से क्रोधित है कि जब वह यरूशलेम और महायाजकों और नेतृत्व की नाक के नीचे लाजर को मृतकों में से उठाता है तो वह जानता है कि यह उसकी मृत्यु होने वाली है। और थॉमस ने कहा, चलो उसके साथ मौत तक चलें। और क्योंकि वह एक आदमी को मरे हुओं में से जीवित करने जा रहा है, वे इसके लिए उसे मार डालेंगे। और मुझे लगता है कि यहीं पर यीशु उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वास्तविक समय में यह कहा गया है कि यीशु पागल था, और एक पाठ्य समस्या तब थी जब शिष्य छोटे लड़के से दुष्टात्मा को बाहर नहीं निकाल सके। और इस बात की संभावना है कि यदि वह क्रोधित था तो वह पाप पर क्रोधित था, और कैसे पाप ने उसकी अच्छी रचना को नष्ट कर दिया था। यही एकमात्र समय है जब ऑर्गिन्जो ने वास्तव में यीशु का उपयोग किया है। तो मेरा मतलब है, हम यीशु को एक क्रोधी व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, जैसे कि मंदिर की सफाई, लेकिन यह ऐसा नहीं कहता है। लेकिन वह गहराई से प्रभावित हुआ, जो कि खर्राटे लेना है। इसका अनुवाद इसी प्रकार किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वह क्रोध का प्रेरक है। यह गहराई से प्रभावित है। यह उन शब्दों का इतने तरीकों से उपयोग नहीं करता है, लेकिन जैसे ही मैं शब्द पढ़ता हूँ, शब्द का उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है कि यह गुस्से और नाराजगी की अभिव्यक्ति है। वैसे भी मैं मंदिर की सफाई के बारे में भी सोचता हूँ, जब वह रस्सियों से कोड़े निकालता है और सर्राफों और मवेशियों को मंदिर से बाहर निकालता है, और वह सिक्के बिखेर देता है और वह मेज को उलट देता है। यह काफी हिंसक कार्रवाई है, अस्वीकृति है। मैं कहूंगा कि यह हिंसक है क्योंकि यह जोशीला है। यह हिंसक नहीं है क्योंकि यह क्रोध है। मेरे पिता के घर के प्रति उत्साहत्म हो रहा है। हाँ, यह उसके पिता के घर के प्रति उत्साह से प्रेरित है। वैसे भी यह एक दिलचस्प चर्चा है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने गुस्से को प्रमाणित करने के लिए यीशु को पागल बनाना चाहते हैं। निःसंदेह मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह कहने का सुरक्षित तरीका है कि यह उल्लेखनीय है कि बाइबल कितनी कम कहती है कि यीशु क्रोधित थे। और जैसा कि आप कहते हैं, ये अभिव्यक्तियां दुष्टता के विरुद्ध हैं। हाँ, हाँ, जनता के खिलाफ नहीं। हाँ, जहां तक चर्च का सवाल है, पॉल कहते हैं, क्रोध करो और पाप मत करो। इसलिए मुझे लगता है कि गुस्सा होना एक जगह है, नैतिक आक्रोश के लिए एक जगह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह यहीं तक सीमित है। मुझे लगता है कि यह गुस्सा हो सकता है क्योंकि आपका जीवन साथी टूथपेस्ट को ठीक से नहीं निचोड़ता है, या कुछ इस तरह का। आप बस एक स्थिति पर क्रोधित हैं। आप एक स्थिति से निराश हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक जगह है, लेकिन पाप वह नहीं है जब आप नियंत्रण खो देते हैं। आप हार जाते हैं, आप इसके रास्ते के बीच में उतावले हो जाते हैं। मैं इसे समझ नहीं पाऊंगा। खैर, मैं उस स्थिति को देखते हुए कहूंगा जहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है, अगर वह गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देती है तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि गुस्सा वह उपकरण है जो भगवान ने हमें खतरे से निपटने के लिए दिया है। मुझे वह पसंद है। मुझे लगता है ये सही है। और इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम नैतिक आक्रोश के लिए तो जगह है। पाप मत करो। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि कोई भी गलत का बदला गलत से न चुकाए, लेकिन हमेशा वही करने का प्रयास करता हूं जो एक दूसरे के लिए, बाकी सभी के लिए अच्छा हो। सदैव आनंद मनाओ, निरंतर प्रार्थना करो और हर बात में धन्यवाद करो। तो दूसरे शब्दों में, पाप का मतलब यह नहीं है कि आप अभी भी प्रभु में आनंदित नहीं होंगे। यह काफी हद तक गुस्से पर काबू पाने वाला है। इसलिए आनंदित न होना, आभारी न होना पाप है। और बुराई का बदला बुराई से देना पाप होगा। खैर, तो अब तीसरी चीज जो ईश्वर करता है वह यह है कि हमारे पास ईश्वर है। यह हास्यपूर्ण हंसी है। यह न्याय और विजय की हंसी है। यह उनका नैतिक आक्रोश है जो बहुत जायज और जरूरी है। तीसरा, वह राजा को सियोन पर स्थापित करता है। हिब्रू पाठ में आए अत्यधिक सशक्त है। मैं स्थापित करता हूं, ठीक है, उन शब्दों के द्वारा वह राजा को स्थापित कर रहा है, ठीक उसी तरह जिसे हम भाषण अधिनियम सिद्धांत कहते हैं कि मंत्री कहते हैं, मैं आपको आदमी और पत्नी का उच्चारण करता हूं और वे शब्द इसे प्रभावित करते हैं। और इसलिए उनका शब्द मैं अपने राजा को स्थापित करता हूं, इसे एक विवाह घोषणा के रूप में प्रभावित करता है, जैसा कि मैं इसे समझूंगा। और सियोन, ठीक है, हम वास्तव में नहीं जानते कि सियोन शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन यह पश्चिम में टायरोपियन घाटी और यरूशलेम शहर के पूर्व में किड्रोन घाटी के बीच की पहाड़ी को संदर्भित करता है। ज्यादातर मामलों में यह मंदिर पर्वत को संदर्भित करता है जहां अब डोम ऑफ द रॉक स्थित है। यह अजेयता को दर्शाता है। डेविड की विजय से पहले नाम और उपयोग सियोन का गढ़ था। और इसलिए सियोन अजेयता का प्रतीक है कि इसे हराया नहीं जा सकता। और इसे पवित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां ईश्वर निवास करता है और इसे अलग रखा गया है। जैसा कि मुझे लगता है कि लेविंसन कहते हैं, सियोन इतिहास में है, लेकिन यह इतिहास से अलग भी है। यह इतिहास से परे है। इसलिए उनका शब्द मैं अपने राजा को स्थापित करता हूं, इसे एक विवाह घोषणा के रूप में प्रभावित करता है, जैसा कि मैं इसे समझूंगा। और सियोन, ठीक है, हम वास्तव में नहीं जानते कि सियोन शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन यह पश्चिम में टायरोपियन घाटी और यरूशलेम शहर के पूर्व में किड्रोन घाटी के बीच की पहाड़ी को संदर्भित करता। यह शाश्वत और पवित्र है। मुझे लगता है कि सियोन पर ईसा मसीह की स्थापना उनके स्वर्गारोहण के समय हुई थी। मुझे नए नियम में ऐसा नहीं मिला कि वह वापस आएगा और पृथ्वी पर फिर से राजा के रूप में स्थापित होगा। मैं इसे नए टेस्टामेंट में नहीं ढूंढ पा रहा हूं। वह यूहन्ना अध्याय 16 और पद 13 में कहता है, जब वह सत्य की आत्मा आएगी तो वह तुम्हें पंटा संपूर्ण सत्य में मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेंगे। वह वही बोलेगा जो वह सुनता है और वह तुम्हें वही बताएगा जो अभी आना बाकी है। नए नियम में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि मसीह सियोन पर्वत पर या यरूशलेम में राजा बनने के लिए पृथ्वी पर लौट रहे हैं। मेरे विचार से संपूर्ण सिद्धांत संपूर्ण ताने बाने से बना है। यह वहां है ही नहीं। और यदि आत्मा हमें सभी सत्यों का मार्गदर्शन करने के लिए है, तो मेरे लिए कुछ धारणा स्थापित करना है कि यीशु पृथ्वी पर लौटने और एक सांसारिक राज्य स्थापित करने जा रहा है, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, इसका कोई भी वर्णन है। फिर नए नियम में 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के बाद इसराइल को एक राजनीतिक इकाई के रूप में फिर से संगठित होने का कोई संदर्भ नहीं है। इसका कोई संदर्भ ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि नया नियम इज़राइल को सिखाता है, पूरा इज़राइल बच जाएगा। और मुझे लगता है कि रोमियो 11 में यह इतिहास के अंत में है, लेकिन नए नियम में यीशु के पृथ्वी पर लौटने, तीसरे मंदिर का निर्माण करने के बारे में कुछ भी नहीं है। नहीं। और यदि आत्मा हमें सभी सत्यों का मार्गदर्शन करने के लिए है, तो मेरे लिए कुछ धारणा स्थापित करना है कि यीशु पृथ्वी पर लौटने और एक सांसारिक राज्य स्थापित करने जा रहा है, जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, इसका कोई भी वर्णन है। फिर नए नियम में 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के बाद इसराइल को एक राजनीतिक इकाई के रूप में फिर से संगठित होने का कोई संदर्भ नहीं है। यहाँ धुआं है जिसके बारे में आप कह सकते हैं शायद यह उसी ओर इशारा कर रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट रहस्योद्घाटन नहीं है। फिर दूसरी बात, यूहन्ना 4 कहता है कि सांसारिकता समाप्त हो गई है, हम अब आत्मा में हैं। सामरी स्त्री ने यहूदियों और सामरियों के बीच के मुद्दे पर उंगली उठाई। मुद्दा यह था कि आप पूजा कहाँ करते हैं? क्या आप यरूशलेम पर्वत पर आराधना करते हैं या गेरिज़िम पर्वत पर आराधना करते हैं? रब्बी ने कहा, यदि सामरी गेरिज़िम को छोड़ देंगे और यरूशलेम में पूजा करेंगे तो हम एक साथ भाई बन सकते हैं। यही उनके बीच विभाजन रेखा थी। सामरी पेंटाटेच में 10वीं आज्ञा एबेल और व्यवस्था विवरण 27 इत्यादि पर एक वेदी के निर्माण से सामग्री उठाना है। 10वीं आज्ञा अनिवार्य रूप से यह है कि आपको गेरिज़िम पर्वत पर पूजा करनी होगी, और वह उस मुद्दे को सही ढंग से उठाती है। महिला ने कहा, सर, मैं देख सकती हूँ कि आप पैगंबर हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर, सामरिया में गेरिज़िम पर्वत पर, जो वर्तमान में नबलस है, पूजा की थी। परंतु तुम यहूदियों का दावा है कि जिस स्थान पर हमें आराधना करनी चाहिए वह यरूशलेम में है। नारी, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास करो, एक समय आ रहा है जब तुम न तो इस पहाड़ पर और न ही यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम सामरी लोग उस चीज की पूजा करते हो जो तुम नहीं जानते। हम उसकी पूजा करते हैं जिसे हम जानते हैं कि मुक्ति यहूदियों से है। फिर भी वह समय आ रहा है और अब भी आ गया है जब सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि वे उस प्रकार के उपासक हैं जिन्हें पिता चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासकों को आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। तो हम आत्मा के युग में हैं। अब सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पंथ को समाप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा यीशु स्वर्ग में चढ़ गए और हमें बताया गया कि उस समय वह भगवान के दाहिने हाथ पर बैठे थे। पहले उपदेश में पीटर कहते हैं, भगवान के दाहिने हाथ से सम्मानित उन्होंने पिता से प्राप्त किया है, वादा की गई पवित्र आत्मा ने वह सब डाला है जो आप अब यहां देख रहे हैं। परंतु दाऊद स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, तो भी उसने कहा, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी न कर दूं। इसलिए थे सब इसराइल निश्चित हो कि परमेश्वर ने इसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह दोनों ठहराया। और जैसा कि मैं नए नियम को समझता हूँ, यह स्वर्ग से है कि मसीह अब अपना चर्च बना रहा है। और हम सियोन पर्वत पर आते हैं जो स्वर्गीय यरूशलेम है, और हम इसे आत्मा में करते हैं। इब्रानियों का लेखक कहता है, परंतु तुम जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम सियोन पर्वत पर आ गए हो। आप हर्षित सभा में हजारों हजारों स्वर्गदूतों के पास पहिलौठे के चर्च में आए हैं जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आप परमेश्वर के पास आए हैं जो सभी का न्यायाधीश है, सिद्ध बनाए गए धर्मी लोगों की आत्माओं के पास, यीशु के पास, नई वाचा के मध्यस्थ के पास, और उस छिड़के हुए खून के पास आए हैं जो हाबिल के खून से बेहतर शब्द बोलता है। क्योंकि हाबिल का लहू पलटा के लिए चिल्ला रहा था, परंतु यीशु का लहू क्षमा के लिए चिल्ला रहा था। परंतु हम सियोन पर्वत पर आ गए हैं और वह स्वर्गीय यरूशलेम है। इसलिए जब मैं अपने राजा को स्थापित करता हूँ तो मैं सबसे अच्छी बात यह बता सकता हूँ कि इसकी पूर्ति तब होती है जब मसीह स्वर्ग में उतरे और भगवान के दाहिने हाथ पर बैठे, और वहां से वह शासन करता है, सभी राष्ट्रों पर अधिकार रखता है और अपना चर्च बनाता है। तीसरे श्लोक में राजा उस आदेश को पढ़ता है जिससे उसे पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार मिलता है। श्लोक सात में हम भगवान के साथ उसका रिश्ता देखते हैं। आठवें श्लोक में पृथ्वी से उसका संबंध बताया गया है, और श्लोक नौ में राष्ट्रों के साथ उसका संबंध। सबसे पहले भगवान से उसका रिश्ता, वह एक बेटा है। ऐतिहासिक रूप से जब कोई बोल रहा होगा, मैं डिक्री घोषित करूंगा। मैंने अपने आप से कहा, यह अवश्य ही राजा होगा और इसकी पूर्ति मसीह में होती है। और जब वह कहता है मैं इसका पाठ करूंगा, तो यह एक समूह है, एक संकल्प है। मैं इस पर दृढ़ हूं क्योंकि उस आदेश को पढ़कर और यह मानते हुए कि वह ईश्वर का राजा है, वह अस्वीकृति स्वीकार कर रहा है और वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है क्योंकि वह राजा बनने का इच्छुक है और वह इससे नहीं भागता है, और वह फरमान सुनाने का संकल्प लेता है। इसके लिए जबरदस्त विश्वास की आवश्यकता थी, यह जानते हुए कि राष्ट्र जा रहे थे और यीशु को पता होगा कि वे उसे मौत के घाट उतारने जा रहे थे, और फिर भी उसने फरमान सुनाया, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इसने इससे परहेज नहीं किया। और आज मुझे लगता है कि जब चर्च उत्पीड़न की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि हम यह आदेश सुनाएं कि जितने लोग उनमें विश्वास करते हैं उन्हें ईश्वर के पुत्र कहलाने का अधिकार है। वह आदेश है, यह शर्त है। डिक्री का अर्थ है कि यह एक अनुबंध की शर्त को संदर्भित करता है, और वाचा की शर्त दाऊद की वाचा है। और परमेश्वर ने दाऊद से कहा, जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे वंश को अर्थात सुलेमान को, अर्थात तेरे मांस और लोहू के द्वारा तेरे उत्तराधिकारी के लिए उत्पन्न करूंगा, और मैं उसका राज्य स्थापित करूंगा। वही मेरे नाम का घर बनाएगा, और मैं उसके राज्य का सिंहासन सदा के लिए स्थिर करूंगा। मैं उसका पिता बनूंगा और वह मेरा पुत्र बनेगा। जब वह पाप करेगा, तब मैं उसे मनुष्यों के द्वारा चलाई जाने वाली छड़ी से और मनुष्य के हाथ से मारे हुए कोड़ों से दंड दूंगा। और वह आदेश केवल सुलेमान के लिए नहीं था जो अपने राज्याभिषेक पर इस अर्थ में परमेश्वर का पुत्र बना, बल्कि यह इसराइल के सभी राजाओं के लिए राज्याभिषेक की विधि है। राजा के मामले में हम उसे ईश्वर का दत्तक पुत्र मान सकते हैं। यीशु दत्तक पुत्र से बढ़कर हैं, लेकिन राजा को पुत्र के रूप में गोद लिया गया, वह ईश्वर का पुत्र बन गया। मैं इसे गोद ले लेता हूं। वह ईश्वर द्वारा जैविक रूप से उत्पन्न नहीं हुआ था, उनकी प्राकृतिक जैविक उत्पत्ति थी, इसलिए वह पुत्र होगा, आरंभ से नहीं परंतु गोद लिए जाने से। इज़राइल को ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि उनमें दैवीय रक्त था, ऐसा है कि भगवान ने उन्हें अपनाया या उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। उसने इज़राइल को अपना परिवार बनाया। उन्हें उनके पिता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। दूसरे रूपक में वह उनका पति हो सकता है। डेविड, जिसका वंश प्रसिद्ध है, ने ईश्वर को पिता कहकर संबोधित किया। मुझे लगता है कि इसका उदाहरण बोअज का मामला है, जिससे रूथ शारीरिक रूप से पैदा हुई थी। उसने बोअज को अपनी सास नाओमी को दे दिया। हमें बताया गया है कि बोअज को नाओमी का पुत्र बनाया गया था और यह गोद लेने के द्वारा होगा, परंतु नाओमी माँ बन गई और बुढ़ापे में उसकी देखभाल करने के लिए बोअज नाओमी का पुत्र बन गया। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि दाऊद राजा परमेश्वर का पुत्र है। ईसा मसीह चार प्रकार से ईश्वर के पुत्र हैं। तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, ल्यूक का कहना है कि वह अपनी वंशावली को एडम से जोड़ता है और कहता है, ईश्वर का पुत्र जो जरूरी नहीं कि उसे अलग करेगा, परंतु वह परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि वह दाऊद का पुत्र है। दाऊद के वंश का प्रत्येक राजा गोद लेकर परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, उन्होंने उन्हें अनुशासित किया और उन्हें हटा दिया। परंतु मसीह परमेश्वर का पूर्ण आज्ञाकारी पुत्र था और परमेश्वर उसे एक पुत्र के रूप में अपनाता है। परंतु वह दाऊद द्वारा परमेश्वर का पुत्र है। मैं समझता हूँ कि भजन 2 में जो कहा गया है, आज मैं तुम्हारा पिता बन गया हूँ, आज मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मुझे लगता है कि यह उसका राज्याभिषेक दिवस है क्योंकि दाऊद का पुत्र अब राजा के रूप में उसका राज्याभिषेक हो चुका है और इस तरह वह परमेश्वर का पुत्र बन गया है। ल्यूक के धर्मशास्त्र में वह पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर का पुत्र है। हम सभी क्रिसमस की कहानी जानते हैं कि स्वर्गदूत ने कहा था कि पवित्र आत्मा उस पर आएगी और वह आत्मा से पैदा हुआ है। तो वह दाऊद के पुत्र के समान परमेश्वर का पुत्र है। वह परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है। वह अपने शाश्वत स्वभाव से ईश्वर का पुत्र है। वह हमेशा भगवान के साथ रहता था। यह जॉन का धर्मशास्त्र है। यह जॉन की उच्च क्रिस्टोलॉजी है कि यह शब्द शुरुआत में भगवान के साथ था और हमेशा भगवान था। उसके स्वर्गारोहण पर परमेश्वर ने उसे वह महिमा लौटा दी जो उसके स्वयं को दीन होने से पहले थी। वह दुनिया में आया और इसलिए मसीह दाऊद के पुत्र के समान परमेश्वर का पुत्र है। मैं स्पष्ट रूप से सोचता हूँ कि चूंकि नाथनेल ने कहा, आप ईश्वर के पुत्र मसीह हैं, और उसने कहा कि पहले पत्रस ने कैसरिया फिलिप्पी में यह मान लिया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह यीशु के मंत्रालय की शुरुआत में ही है। मुझे लगता है कि नथनेल अंजीर के पेड़ के नीचे था जो इज़राइल का प्रतीक है। मुझे लगता है कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा था और वह पहचानता है कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। लेकिन जोहानन धर्मशास्त्र में इसे इसके पूर्ण अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। मुझे नहीं लगता कि नाथनेल को वह सब पता था जो वह कह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जॉन के धर्मशास्त्र के प्रकाश में वह यह समझने से कहीं अधिक कुछ कह रहा था कि वह ईश्वर का शाश्वत पुत्र है। आप जानते हैं, ब्रूस गोद लेने के व्यवसाय पर जब यीशु क्रूस पर थे और उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा बेटा मैरी और जॉन से है, यह कानूनी गोद लेने की भाषा है। तो यह उसी तरह की चीज है जहां यह बहुत समान है। हाँ, बहुत समान। पृथ्वी के साथ राजा का रिश्ता पृथ्वी के निर्माता की विरासत है, जिसे यह अधिकार है कि वह जिसे चाहे उसे अपनी रचना दे सकता है। और इसलिए पूरी पृथ्वी का निर्माता कहता है, यह इस राजा के लिए आपकी विरासत है। तो वह बेटे से कहते हैं, पूछो। और मैं कहता हूं कि हालांकि वाचा के वादे से एक बेटा और विरासत के जरिए पृथ्वी का उत्तराधिकारी, राजा को वादा पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उस पर विश्वास के साथ निर्भर रहना चाहिए। और इसलिए भगवान कहते हैं, यीशु कहते हैं, मेरे पास सारा अधिकार है, लेकिन हमें पूछना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। महान आदेश को पूरा करने के लिए हमें प्रार्थना में संघर्ष करना चाहिए। तो वह प्रार्थना में है और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है जिसने पृथ्वी का निर्माण करके उसका स्वामित्व किया है। और फिर वह कहता है, और मैं दे दूंगा। मुझे लगता है कि यह सही अनुवाद है। इसका अनुवाद किया जा सकता है कि मैं इसे दे सकता हूँ। निःसंदेह राष्ट्र वे हैं जो उनके विरुद्ध विद्रोह करते रहे हैं। और विरासत एक संपत्ति या संपत्ति है जो किसी के पिता से बिना खरीद मूल्य के भुगतान के विरासत में मिली है। और पृथ्वी का छोर इब्राहीम वाचा की सीमा से परे है। यह भजन 72 का समापन है क्योंकि सुलेमान अपने भविष्य के राजा और समय और स्थान में उसके सार्वभौमिक शासन की आशा कर रहा है। वह दयालु और न्यायप्रिय राजा जो आने वाला है, समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के छोर तक शासन करे। मरुभूमि के गोत्र उसके सामने झुकें और उसके शत्रु धूल चाटें। तर्शीश और दूरदराज के तटों के राजा उसके लिए भेंट लाएं। शेबा और सबा के राजा उसे सामने उपस्थित करें। सभी राजा उसे दंडवत करें और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करें। भजन 72 मसीह में अपनी पूर्णता पाता है। और उसने शैतान को स्वर्ग से गिरते देखा जिसने उससे पहले अपना प्रभुत्व खो दिया था। परमेश्वर ने उसे पूर्व दुष्ट युग में शासन करने की अनुमति दी, परंतु अब यीशु ने इस युग में उस पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने उसे अन्य भाषाओं में बांध दिया है। और गलील में जैसे मैथ्यू ने मसीह के मंत्रालय को बंद कर दिया, उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसका पालन करना सिखाओ। और निश्चित रूप से मैं उम्र के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तक चर्च का सवाल है, हम मसीह के साथ सहवारिस हैं। और इसलिए पॉल यही कहता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। जो आत्मा तुम्हें प्राप्त हुई है वह तुम्हें गुलाम नहीं बनाती कि तुम फिर भय में जियो, बल्कि जो आत्मा आपको प्राप्त हुई उसने आपके गोद लेने को पुत्रत्व में बदल दिया। और हम उसके द्वारा चिल्लाते हैं, अब्बा पिता। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब यदि हम बच्चे हैं तो हम वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के सहवारिस हैं। यदि हम सचमुच उसके कष्टों में सहभागी हों, ताकि हम भी उसकी महिमा में सहभागी हो सकें। और इसलिए हर दिन हमारी धर्म विधि में एलेन और मैं प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आपने सभी को अपने बचाने वाले आलिंगन की पहुंच में लाने के लिए क्रूस की दृढ़ लकड़ी पर अपने प्यार की बाहें फैलाईं। इसलिए हमें अपनी आत्मा में ढाले ताकि हम प्रेम में हाथ बढ़ाकर उन लोगों को भी आपके ज्ञान और प्रेम में ला सकें जो आपके नाम के सम्मान के लिए आपको नहीं जानते हैं। अंत में राजा का पृथ्वी से रिश्ता यह है कि वह शासन करेगा और वह अपने दूसरे आगमन पर, जैसा कि बाद में पता चला, लोहे की छड़ से उन्हें तोड़ देगा। यहां शब्द विराम के संबंध में एक पाठ्य समस्या है। हिब्रू शब्द का उच्चारण तेरोइन से होता है। और मैं आपको हिब्रू में टीआर के व्यंजन देता हूं, एक आयरन मिला और फिर आपको एक एम तेरोइन मिला। और मुद्दा यह है कि क्या यह राह धातु से आया है जिसका अर्थ है तोड़ना, या क्या यह राह धातु से आया है जिसका अर्थ है चरवाहा करना। और इसलिए यह एक पाठ्य समस्या है जो आपके यहां है। इसके व्यंजन समान हैं। मुद्दा यह है कि आप इसे कैसे मुखरित करते हैं। और मुझे लगता है कि तोड़ना मूल अर्थ है, क्योंकि एक बात के लिए, जैसा कि आपके पास एक ऑक्सीमोरोन है, आप उन्हें छड़ी से तोड़ने जा रहे हैं, आप उन्हें लोहे की छड़ से चराने जा रहे हैं। और यह संभव है, ऐसा प्रतीत होता है कि चरवाही बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रही है। छड़ी वहां भेड़ों की सुरक्षा के लिए थी। तुम लाठी लेकर भेड़े नहीं चराते। तो यह मेरे लिए काम नहीं करता। और समानांतर यह है कि आप उन्हें तोड़ देंगे। मेरे लिए बेहतर समानांतर ब्रेक है। और राह शब्द जिसे तोड़ना एक आरामी शब्द है जो कहीं अधिक कठिन है, लेकिन आपके पास एक और आरामी है जब यह कहता है कि सूर्य को चूमो। सूर्य के लिए हिब्रू शब्द बरब्बा की तरह बार है और यह एक आरामी शब्द है। तो एड से मुझे केवल यही संकेत मिलता है कि मूल रूप से इसका मतलब लोहे की छड़ से तोड़ना था और यह उन्हें तोड़ देगा, लेकिन यह दूसरे आगमन पर है जब यह आने वाला है। और जिस चर्च को मैंने वहां रखा था वह चर्च यह पृष्ठ 281 पर था। मेरे दिमाग में फिल्म वॉर रूम थी जहां पत्नी ने प्रार्थना के माध्यम से एक घर और एक शादी को बचाया, लेकिन वह शैतान को अपने घर में जीत हासिल करने की इजाजत नहीं देगी। मुझे लगता है कि यह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि हम प्रार्थना के माध्यम से कैसे जीतते हैं। भजनहार शासकों को समर्पण करने की चेतावनी देता है। सबसे पहले वे भजनहार के साथ अपने रिश्ते के प्रति समर्पित होते हैं, फिर आईएम के साथ रिश्ते के प्रति, और अंत में राजा के साथ रिश्ते के प्रति। भजनहार से संबंध बुद्धिमान होने का है। यहां तर्क है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह सफल नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपना राजा स्थापित किया है। यह राजा पृथ्वी का उत्तराधिकारी है और वह तुम्हें चकनाचूर कर देगा। इसलिए उन तीन श्लोकों के प्रकाश में चतुर बने और उसके शासन के प्रति समर्पित हो जाएं। इसका एक तर्क है। आईएम से उनका रिश्ता आईएम की सेवा करना है। यह पूजा का शब्द है। मैं हूं शब्द पर चर्चा करता हूं। इसका मूल रूप से मतलब है कि मैं स्वामी के रूप में अधीन हूं या उसके अधीनस्थ स्थिति में हूं। और मैं यह कहना जारी रखता हूं कि क्योंकि हम नश्वर हैं, हम किसी गुरु की सेवा करते हैं। हम या तो पाप और मृत्यु और शैतान की सेवा करते हैं, या हम ईश्वर और मसीह की सेवा करते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के शासन के अधीन से बाहर निकलते हैं तो हम अपने जुनून के अधीन आ जाते हैं और हम शैतानी शासन के अधीन आ जाते हैं, क्योंकि हम नश्वर हैं। हम सिर्फ नश्वर हैं। मैं यहां यही विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं। यह जीवन के संपूर्ण तरीके को संदर्भित करता है। यही कारण है कि यहोशू कहता है, जहां तक मेरी और मेरे घराने की बात है, हम इसराइल की वाचा के परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करते हुए यहोवा की सेवा करेंगे। और यही रिश्ता होना चाहिए। और जहां तक पुत्र का संबंध है, उन्हें पुत्र की आराधना करनी है। पुत्र को चूमने का अर्थ है उसकी पूजा करना। पृष्ठ 282 पर मैं अश्शूर के राजा की भूमि को चूमते हुए येहू की एक तस्वीर देता हूं, और आप वहां तस्वीर देख सकते हैं। और यदि तुम न करोगे तो वह कहता है कि वह नाश हो जाएगा, परंतु धन्य हैं वे सब जो उसमें शरण लेते हैं। ईश्वर का अंतिम शब्द मोक्ष है और यही उसकी इच्छा है। ठीक है, तो यह राज्याभिषेक है, महान राज्याभिषेक अनुष्ठानों में से एक। यह डॉक्टर ब्रूस वाल्टके और भजन की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या 21 धार्मिक दृष्टिकोण राज्याभिषेक स्तोत्र 2 और 110 है।